الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. وفي الأرض آيات للموقنين، زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وفی انفسکم، اور خود تمہارے نفوس میں بھی. افلا تبصرون، اور آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. فورب السماء، آسمان اور زمین کے رب کی قسم. انہ لحق، بے شک وہ حق ہے. مثل ما انکم تنطقون، جیسا کہ یہ بات کہ تم بولتے ہو. سورۃ الذاریات کی ابتدائی آیات میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے چار قسمیں کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بے شک وہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، وعدہ کیا جا رہا ہے، سچ ہے. اور وہ بات کیا ہے کہ جب دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی تو ایک دوسری زندگی شروع ہوگی جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں. تو یہ جو تم سے کہا جا رہا ہے اور یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور پھر قیامت تک احادیث شریفہ اور میرے کلام کے ذریعے، کہ کسی کے مرنے پر زندگی ختم ہوتی نہیں ہے. دو زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی. مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوتی ہے. ایک بہت بڑا دنیا میں آج بھی ہے और हर दौर में रहा है, जो मरने के बाद किसी जिंदगी के कायल ही नहीं है। दहरिया एथिस्ट, बस इस दुनिया में आए, अब खाओ पियो, अल्लाह के वजूद का कोई तसव्वुर नहीं, मरने के बाद की जिंदगी का कोई तसव्वुर नहीं, मर गए, सड़ गए, रेजा रेजा हो गए, मामला खत्म। और बतौर दलील के वो यही बात पेश करते हैं कि एक चीज जब खत्म हो जाती है, रूह निकल जाती है, अब जिस्म रह गया, उसे समंदर में बहा दिया या जमीन में दफन दिया, आग में जला दिया या जमीन पर पड़े रहने दिया, गल सड़ जाएगा, हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, और कई सौ साल के बाद, हजारों साल के बाद तो पता भी नहीं चलेगा। और बहुत सी लाशें गलने और सड़ने के बाद हवाओं के उन्हें उड़ा ले जाने की वजह से पता नहीं कहां कहां उसके जर्रात मुंतशिर हो जाएंगे। और कभी कभी किसी को किसी जगह दफन किया जाता है, मुरूर अय्याम की वजह से कब्र के निशानात मिट जाते हैं, कब्रस्तानों के निशानात मिट जाते हैं, तो लोग खोद खोद कर वहां से मिट्टी ले जाते हैं। तो एक जिस्म जो गल सड़ गया है, रेजा रेजा हो गया है, उसके जर्रात बन गए हैं, उसका कुछ हिस्सा इधर चला गया, कुछ हिस्सा उधर चला गया, ये जर्रात जो इतने मुंतशिर हो जाते हैं, इनमें इनको मुरक्कब करना, मुरक्कब करके दोबारा उनमें जान पैदा करना, ये कैसे मुमकिन है? असल जो दलील है मुनकिरीन की वो ये है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम के जमाने में भी दूसरी एक बहुत ही कमजोर दलील वो ये पेश करते थे कि तुम ये कहते हो कि अजाब आने वाला है, या तुम ये कहते हो कि मौत वाकई होगी और उसके बाद अजाब आएगा, तुम ये कहते हो कि कयामत का दिन आने वाला है, कयामत के दिन के बाद सजा मिलेगी आखिरत की जिंदगी में, अल्लाह ताला शानुहू ने जो अकीदा हमें बतलाया है वो यही है कि इस जिंदगी के बाद एक दूसरी जिंदगी है। नंबर दो, उस जिंदगी के अंदर जजा और सजा होगी, अच्छे आमाल का बदला मिलेगा अच्छाई के साथ, बुरे आमाल की सजा मिलेगी बुराई के साथ, अच्छे काम करने वालों को जन्नत मिलेगी, बुरे काम करने वालों को जहन्नम मिलेगी। तो वो ये कहते थे कि ठीक है, ये कयामत आने वाली है तुम कह रहे हो, तो ये तुम्हारा अकीदा है, ये तुम्हारा नजरिया है, तो जरा ये तो बताओ कि ये कब होगा। अय्यान यौमुद्दीन, इन्नमा तुअदुना लवाके, कि वो आखिरत मरने के बाद की जिंदगी जिसका तुमसे बार बार वादा किया जा रहा है वो वाकई होगा। इन्नमा तुअदुना लसादिक, वो सच है, और वह इन दीन लवाके, और उसमें फिर बदला जजा और सजा वो वाकई होने वाली है। तो कब होगा? जब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, तो फिर तारीख भी तो मालूम होनी चाहिए, कुछ अंदाजा तुम्हें होना चाहिए कि 100 साल के बाद होगा, 200 साल के बाद होगा, ये कोई दलील नहीं है। लेकिन जो स्टॉलवर्ड्स होते हैं, जो लीडर टाइप के लोग होते हैं, वो उनके पीछे चलने वालों के दिलों में शुबहा पैदा करने के लिए ऐसे सवालात किया करते थे, और आज भी ऐसा ही होता है, और अवाम इतनी होशियार नहीं तो आंख बंद करके चलती है कि हां देखो ये कितना अहम सवाल है, ये इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो सूरतु ज़ारियात की इब्तिदाई आयात में अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मनवालुहु ने चार चीजों की कस्में खाई, वज़ारियात ज़रवा फलहामिलात विक़रा फलजारियात युसरा फलमुक़स्सिमात अमरा, हवाओं की कसम खाई, बादलों की कसम खाई, कश्तियों की कसम खाई और फरिश्तों की कसम खाई। और बाद हजरात की राय यह है कि नहीं, ये हवाओं ही की कसम है, हवाओं के मुख्तलिफ मराहिल की कसम है, यह अलग अलग किस्म की हवाओं की कसम है। और ये कसमें खाकर कहा कि इन्नमा तुअदून लसादिक, वो बात जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है कि आखिरत आने वाली है, मरने के बाद एक दूसरी जिंदगी है, वो सच है। और दूसरी बात जो तुमसे कही जा रही है कि उस जिंदगी में बदला दिया जाएगा अच्छे आमाल का और बुरे आमाल का, वो वाकई होने वाला है। चार कसमें खाई और इन चार कसमों के जरिए अल्लाह ताला शानहु ने इस मजमून को मुअक्कद भी किया और मुदल्लल भी किया। इस पर तफसील से गुफ्तगू पहले हो चुकी है। और फिर एक और कसम खाई, वस्समाई ज़ातिल हुबुक, फिर उसी बात को मुअक्कद करने के लिए, इन्नकुम लफी कौलिम मुख्तलिफ, तुम एक इख्तिलाफी बात में पड़े हुए हो। मोमिनिन का अकीदा यह है कि मरने के बाद एक जिंदगी है, उस जिंदगी में सजा और जजा है, और तुम कहते हैं कि ना, ये इख्तिलाफ कर रहे हैं तुम। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मरने के बाद एक जिंदगी है और उसमें जजा और सजा है, उनके बस दलाइल हैं, और तुम्हारे पास दलाइल नहीं है। कुतिल अल खर्रासून, बगैर दलील के बेसनद बातें कर रहे हैं। तो ऊपर जो चार कसमें खाई थी, उन चार कसमों के बाद अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मनवालुहु ने जिस बात को मुअक्कद किया और मुदल्लल किया, वो ये है कि मरने के बाद एक जिंदगी है। और अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मनवालुहु ने उनकी पहली दलील को रद्द किया। उससे पहली दलील क्या है उनकी, कि इंसान मर जाता है, मरने के बाद गल सड़ जाता है, रेजा रेजा हो जाता है, उस जिस्म के ये जो आजा रेजा रेजा हो गए हैं वो मुंतशिर हो जाते हैं। इनको इकट्ठा करना, इकट्ठा करके दोबारा मुरक्कब करना और मुरक्कब करके उसमें दोबारा जान पैदा करना कैसे मुमकिन है। तो पहली चार कस्में खाकर के अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मनवालुहु ने उसको मुदल्लल किया, उसको मुअक्कद किया। दूसरी कसम खाकर के भी यही है, यानी अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मनवालुहु अपनी कुदरत कामिला का इजहार फरमा रहे हैं। हवाओं को आप देखिए, हवाओं की किस्मों को आप देखिए, बादलों को देखिए, बादलों का निजाम देखिए, ये बादल समंदर से उठते हैं और समंदर से जो कतरे उन बादलों में जमा होते हैं, तो ये मुंतशिर कतरे वो बादलों में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो बादल एक एक कतरे को जमीन पे बरसाता है और वो खारी पानी मीठा हो जाता है। ये कुदरतों में नजर आती है कि नहीं। तो जो अल्लाह ये काम कर सकता है वो ये काम नहीं कर सकेगा। तनो मनो वजन की कश्ती पानी पे चलती है, तैरती है, जो अल्लाह ये काम कर सकता है वो तुम्हें जिंदा नहीं कर सकता। फरिश्तों का एक निजाम, जो अल्लाह इतना बड़ा निजाम चला रहा है वो ये काम नहीं कर सकता। वस्समाई ज़ातिल हुबुक, रास्तों वाला आसमान, जीनत वाला आसमान, उसमें सितारे हैं, उसमें चांद है, उसमें सूरज है, और ये जितने सैयारे हैं और जितने सितारे हैं उनके अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी ऑर्बिट, ये जो सारा निजाम चल रहा है और आज तक कोई किसी से टकराया नहीं, तो जो अल्लाह इस निजाम को चला रहा है वो मुर्दी को जिंदा नहीं कर सकता। इन्नकुम लफी कौली मुख्तलिफ, तुम एक ऐसी बात में पड़े हुए हो जिसकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं और खामुखा ही इख्तिलाफ कर रहे हो। ये पहली बात, पहली दलील का रद कि जो अल्लाह इतना कादिर है कि उसने वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो ये काम नहीं कर सकेगा। ये पहली दलील का रद। और दूसरी दलील का रद, यस अलून अयान यौमुद्दीन, बदले का दिन कब होगा, ये भी कोई दलील है भाई। यानी इसका खुलासा ये है कि जब तुम्हें ये मालूम नहीं है कि वो दिन कब होगा तो मालूम हुआ कि गड़बड़ है। तो अल्लाह जल्ला जलालहू वा अम्मनवालहू ने जवाब नहीं दिया यहां पर यस अलून अयान यौमुद्दीन का। अल्लाह ताला शानहु कुरान में दो तरीके इख्तियार फरमाते हैं, एक हाकिमाना और एक हकीमाना। कभी कभी जवाब देते हैं और कभी कभी हाकिमाना अंदाज इख्तियार करते हैं। जैसे एक बेटा अपने बाप से कोई सवाल करता है तो जहां मसलहत का तकादा होता है तो बाप उसको समझाता है, उस सवाल का जवाब देता है। अब्बा आप मुझे ये काम करने के लिए क्यों कह रहे हैं, तो जब देखता है बाप कि मेरा बेटा कुछ सीखना चाहता है, जहीन है, होशियार है, ये एतराजन नहीं पूछ रहा है, तो बाप जो है हकीमाना तरीका इख्तियार करता है और समझाता है, उसकी वजह बतलाता है। और जब बाप को ऐसा अंदाजा होता है कि ये एतराज कर रहा है, बाप का भी यही हाल होता है, मुरब्बी का भी यही हाल होता है, उस्ताद का भी यही हाल होता है, तो हाकिमाना जवाब देता है। तो अल्लाह जल्ला जलालहू वा अम्मनवालहू ने यहां हाकिमाना जवाब दिया, यस अलूना अय्याना यौमुद्दीन, ये लोग बदले के दिन के बारे में पूछ रहे हैं कि कब होगा। यौमहुम अलन्नार युफ्तनून, उस दिन होगा जिस दिन उनको आग में सजा दी जाएगी। इसको एक हिस्से मिसाल से समझिए इस सवाल और जवाब को। एक कैदी है, उसको कोर्ट में लाकर के खड़ा कर दिया गया और वो मुजरिम करार पाया और फांसी की सजा सुना दी गई और उसे पुलिस जो है वो पकड़ के जेल में ले गई। और अब तक किस तारीख को फांसी होने वाली है उसका ऐलान नहीं हुआ, तो वो यही समझ रहा है कि फांसी की सजा का ऐलान तो हुआ है लेकिन चूंकि तारीख मुकर्रर नहीं है इसलिए फांसी की सजा ऐसी ही है। तो वो पुलिस अहलकार के सामने मजाक मजाक में कहता है कि अरे भाई मेरी फांसी किस तारीख को होने वाली है। तो पुलिस अहलकार तारीख नहीं बतलाएगा, इसलिए उसे भी तारीख तो मालूम नहीं, वो कहेगा कि तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हें फांसी दी जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कयामत के वकू की तारीख मालूम नहीं थी। ये उन उलूम में से है जो अल्लाह जल्ला जलालहू वा अम्मनवालहू ने खास अपने पास रखे हैं। इसलिए जब ये सवाल उठाया उन्होंने कहा अय्यान यौमुद्दीन, तो कहा यौमहुम अलन्नार युफ्तनून, जब तुम्हें आग में सजा दी जाएगी ना तो पता चलेगा। और इसके बाद जो है अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मनवालहू ने मुनकिरीन आखिरत और मुनकिरीन जजा और सजा, आखिरत का इनकार करने वालों और जजा और सजा के इनकार करने वालों के लिए जो वईद इंतजार कर रही है उसका जिक्र किया कि उनको जहन्नम में डाला जाएगा, जहन्नम में सजा दी जाएगी, उनसे कहा जाएगा कि अब चखो वो अजाब जिस का तुम मजाक उड़ाया करते थे और जिसके बारे में तुम जल्दी मचाया करते थे कि अगर है तो लाओ ना जल्दी, कहां है वो। और उसके बाद जो मुवहिद हैं, जो मुमिन हैं, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अमनवालुहु को मानने वाले हैं और अल्लाह ताला शानुहु की तौहीद पर ईमान लाने वाले हैं, उनका जिक्र किया कि अल्लाह जल्ल जलालुहु व अमनवालुहु उन्हें बागात में और चश्मों में आखिरत में जगह देंगे और अल्लाह जल्ल जलालुहु व अमनवालुहु उन्हें जो नेमतें देंगे वो खुशी खुशी उन नेमतों को ले रहे होंगे। और वजह उसकी यह है कि इन्नहुम कानू कबल ज़ालिका मुहसिनीन, ये ईमान लाए थे और ईमान लाने के बाद इतनी पुख्तगी उन्होंने हासिल कर ली थी अल्लाह की मारिफत में और सिफत एहसान के उस दर्जे पर पहुंच गए थे कि अल्लाह जो कहता चला गया ये करते चले गए। सिर्फ उन्होंने फर्ज और वाजिब को करने और हराम और मकरूहात तहरीमिया से बचने पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि वो नफल इबादतों में मशगूल होते थे, पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देते थे, बहुत कम सोते थे और ये सब कुछ करने के बावजूद उनमें अकड़ नहीं आती थी, उज्व नहीं आता था, बल्कि सहर के वक्त वो इस्तिग़फ़ार करते थे कि अल्लाह आपकी शाया निशान जो इबादत होनी चाहिए थी वो हमसे नहीं हो सकी, आप हमें मुआफ कर दीजिए। और फिर ज़कात अदा करने के बाद नफल सदकात भी बहुत करते थे और सिर्फ उन लोगों पर नहीं जो सवाल करने के लिए आते थे बल्कि ऐसे गरीबों को भी ढूंढते थे जो इफ्फत और पाक दामनी की वजह से किसी के सामने अपने फक्र का इजहार नहीं करते थे। और इन आयात के जरिए ये इशारा किया कि देखो ईमान कबूल करने वाले जब एक राह पे पड़ जाते हैं तो उनकी कितनी तरक्की होती है। ये बीच में गोया मोतरिजा है और फिर वही मजमून दोबारा शुरू हो गया, वफिल अर्द आयातुल लिल मुकिनीन, जमीन में निशानियां हैं यकीन करने वालों के लिए। किस चीज के बारे में निशानियां हैं? हर चीज के लिए जो अल्लाह हमसे मनवाना चाहते हैं। अल्लाह के वो एक होने पर भी दलीलें हैं मगर यहां मजमून जो असल चल रहा है वो ये कि मरने के बाद दूसरी जिंदगी है उसको मानो और उसके लिए दलीलें कहां है? कहा कि जमीन में है। तो जिन हजरात मुफस्सिरीन ने ये कहा था कि वज़ारियात ज़रवन फलहामिलात विकरन फलजारियात यसरन फलमुकस्सिमात अमरा, ये चार कस्में खाई हैं वो हवाओं की कस्में खाई हैं, चार अलग अलग किस्म की हवाओं की कस्में खाई हैं। वो ये कहते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालुहु व अमनवालुहु अब ये फरमा रहे हैं कि वो समावी निशानी थी ऊपर जो आपसे दूर है जिसको आप आउट ऑफ रीच कह सकते हैं। रहने दो अब आफाक पर आओ, आफाक आफाकी निशानियों को देखो, जमीन जमीन पर आओ, अर्धी 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 निशानियों पर आओ जो तुमसे बहुत करीब है, वो जमीन जिस पर तुम सोते हो, वो जमीन जिस पर तुम चलते हो, वो जमीन जिस पर तुम फिरते हो, वो जमीन जिस पर तुम बैठते हो, वो जमीन जिस पर तुम सफर करते हो, वो जमीन जिस पर तुम खेती करते हो, कई जमीन ही में देख लो तुम अल्लाह जल्ल जलालुहु व अमनवालुहु की कुदरत की निशानियों को। वफिल अर्द आयातुल लिल मुकिनीन, यकीन करने वालों के लिए निशानियां हैं जमीन में, जमीन में है कि जमीन अल्लाह ने बनाई कैसे है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी का, बाकी हिस्सा जमीन बर्र व बहर में तकसीम कर दिया अल्लाह जल्ल जलालुहु व अमनवालुहु ने। और यह समंदर बहता है बहता है बहता है, बहुत कुव्वत के साथ बहता है, लेकिन जब वो साहिल पर आता है तो पानी रुक जाता है और रुककर वापस चला जाता है। अगर अल्लाह जल्ल जलालुहु व अमनवालुहु की कुदरत कार फरमा न होती तो, और बहुत सी जगहों पर ये जो जमीन है, जमीन बर जमीन को कहते हैं और बहर समंदर को कहते हैं, तो सी लेवल से नीचे है, बिलो सी लेवल, बिलो सी लेवल। अगर अबव सी लेवल हो तो समझ में आता है कि पानी बहते 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 आता है और वहां आकर रुक जाता है और वापस चला जाता है। लेकिन जहां जमीन बिलो सी लेवल है वहां कौन ताकत है जो पानी को बर के ऊपर आने नहीं देती? कितनी कुदरत, कितनी कुदरत। ये जो खामोश समंदर हमें नजर आता है ना, उसमें तुगियानी होती है, उस वक्त तो बहुत जोश होता है लेकिन खामोश, ये खामोश समंदर भी बहता रहता है हर वक्त, और इतनी कुव्वत उसमें होती है कि अगर उसमें कोई आदमी छलांग लगा दे और तैरना नहीं जानता तो डूब जाएगा, चलता ही रहता, अल्लाह उसे चलाते ही रहते तो सफाई हस्ती से हम तो कब से मिट चुके होते। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु आम मनवालुहु ने गोल जमीन बनाई, गोल जमीन में एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी का, बहुत बड़ा हिस्सा जमीन का, और फिर जमीन के ऊपर एक ऐसा खूबसूरत किशरा चढ़ाया, लेयर चढ़ाया कि जिसमें इंसानों की, जिससे इंसानों की जरूरत पूरी होती है। ये मिट्टी का अगर लेयर अल्लाह ने न चढ़ाया होता तो हम घरों को कैसे तामीर करते? ये मिट्टी का लेयर अगर न चढ़ाया होता तो फल फ्रूट हम कहां से खाते? ये मिट्टी का लेयर न चढ़ाया होता तो नबातात कैसे उगते, जिसके नतीजे में जानवरों का वजूद है? अगर नबातात ना होते तो जानवर का वजूद ही ना होता, जानवर का वजूद ना होता तो हमें बहुत सारे जो मुनाफे गोश्त और फैट के जरिए मिलते हैं जो हमारे जिस्म के लिए जरूरी है वो हमें कहां से मिलते? कैसी कुदरत कामिला। और फिर ये जमीन जो है, जमीन जो कुछ उगाती है उसमें चांद की चांदनी का भी असर होता है और सूरज की गर्मी का भी असर होता है। मुअल्लक किसी चीज के साथ चिपके हुए नहीं है, ये जो जमीन मुअल्लक है तो इन सब का महल वकू कैसा अल्लाह ने मुरतब किया है कि इतने फासल, इतना फासला चांद से होना चाहिए, इतना फासला सूरज से होना चाहिए, इतना फासला सितारों से होना चाहिए। इसलिए कि अगर फासले जितने होने चाहिए उतने नहीं होंगे तो खेती में कमी रह जाएगी या खेती जल जाएगी। और मुअल्लक कोई कंट्रोल करने वाली चीज नहीं कि इधर उधर हो जाने से रोके, लेकिन ना बस अपनी जगह पे है। अब सूरज जो है अपनी शुआओं के जरिए गर्मी डाल रहा है, चांद की चांदनी उस पर पड़ रही है। और फिर ये मौसम जो अल्लाह ने बनाए, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, और फिर सर्दी का मौसम दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, ऑटम और विंटर। गर्मी का मौसम दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, रबी और सईफ और खरीफ और शिता। ये चार मौसम अल्लाह ने बनाए। ये चार मौसम अलग अलग इसलिए बनाए कि इन सब का असर इस जमीन पर होता है। ये अगर चार मौसम बाकी ना रहे तो जमीन से जो हमें मुनाफे हासिल हो सकते हैं वो नहीं होंगे। इसीलिए बाज फल जो है वो सर्दी के मौसम में आते हैं, बाज फल जो है वो गर्मी के मौसम में आते हैं। और फिर अजीब व गरीब निजाम के गर्मी के मौसम में वो फल होते हैं जिनकी तासीर सर्द है, और सर्दी के मौसम में वो फल होते हैं जिनकी तासीर गर्म है। इसलिए कि अल्लाह ताला शानहू जानते थे कि सर्दी के मौसम में मेरे बंदे को सर्दी लगेगी तो उस सर्दी, जिस्म में जो सर्दी पैदा होगी उसको एतिदाल पर लाने के लिए गर्म गिजा की जरूरत पड़ेगी, और मौसम गर्मा में मेरे बंदे के बदन में हरारत आएगी तो उसको सर्द उसको एतिदाल पर लाने के लिए सर्द चीजों को की जरूरत पड़ेगी। ये वाटरमेलन सिर्फ गर्मी के मौसम में पकता है, जितने मेलन्स हैं वो सिर्फ गर्मी के मौसम में पकते हैं। जिस सीजन में जो चीज पकती है वो उस सीजन के लिए मुफीद होती है। इसलिए कि इंसान को पैदा करने वाला, उस फल फ्रूट और सब्जी को पैदा करने वाला और सीजन और मौसम को पैदा करने वाला खालिक इन तीनों के खवास और इन तीनों के आसार को जानता है। गर्मी के मौसम में सूरज जो है वो जमीन के करीब आ जाता है, सर्दी के मौसम में दूर चला जाता है। ये सारा निजाम यानी ऑटोमेटिक निजाम चल रहा है। हम क्या करते हैं? अल्लाह ताला शानहु इरशाद फरमाते कि अफराई तुम माता रसून, तुम जो खेती करते हो जरा तुम मुझे बताओ कि अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, तुम उगाते हो या हम उगाते हैं। एक तो है खेती करना यानी जमीन को हमवार करना, जमीन को साफ करना, साफ करने के बाद उसमें बीज डालना और उसको पानी देना, बाकी उसको उगाने का काम कौन करता है? उगाने के बाद उसके ऊपर फल कौन लगाता है? उगाने के बाद उसके ऊपर दाने कौन डालता है? ये सब्जियां कौन उगाता है? ये सारे काम तो अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु करते हैं। और फिर जमीन पर अगर कोई गौर करेगा तो उसे पता चलेगा कि नबातात, ये प्लांट किंगडम जो है वो शुमार से बाहर यानी जितना इंसान दरियाफ्त कर सका है, कुछ लोगों को अल्लाह ने इसमें लगा दिया, वो साल हा साल से इसी की तहकीक करते रहते हैं प्लांट्स की। जितनी तहकीक हुई है वो उससे बहुत कम है जो कि नहीं हुई है। यानी यूं समझो कि 1 से 5% चीजें लोगों को मालूम हुई होगी, हो सकता है कि 1% से भी कम हो। जंगलों में जो नबातात हैं, जंगलों में जो प्लांट्स हैं, समंदर के अंदर जो प्लांट्स हैं, 0.01% भी नहीं होगा जितना दरियाफ्त हुआ है। ये जमीन जो है, जमीन की हकाइक लोगों ने मालूम करने की कोशिश की तो सुरंग बनाई, सुरंग टनल। एक तो एक ऐसी टनल बनाने की कोशिश की कि देखें कि अंदर किन किन चीजों के लेयर हैं। उसमें एक तरफ से खोद करके सीधा दूसरी तरफ निकला जाए ताकि पूरी जमीन का अंदाजा हो कि है गया इसमें। तो मुझे इस वक्त मुस्तहजर नहीं है कितने माइल, कि एक मिकदार है माइलों की, 200, 300, 400, 1000, 2000, इतने माइल अंदर जाने के बाद जमीन इतनी सख्त हो जाती है कि साइंस टेक्नोलॉजी ने अब तक इतनी तरक्की ही नहीं की है कि उसको तोड़ सके। चाहते तो हैं कि देखें, है ना, आगे जा ही नहीं सकते। तो इंसानों का इल्म बहुत महदूद, नबातात लाखों की तादाद में, यानी ये जो प्लांट के माहिरीन हैं, इनको अगर हम में से किसी के गार्डन में ले आए ना, छोटे गार्डन में जो जंगलों में घूमते रहते हैं, तो हमारे छोटे से गार्डन में भी उनको ऐसे नबातात मिलेंगे जिनके बारे में वो ये कहेंगे कि इसके बारे में मुझे इल्म नहीं किया है। इहाता नहीं कर सकते। बागात, अशजार, और फिर जो है उनकी अनवा, उनकी अकसाम, फिर अलग अलग रंग, अलग अलग बू, अलग अलग खासियत, अलग अलग असर, और फिर उन पर फल, लाखों किस्म के फल। बहुत सारे तो दरियाफ्त अभी तक नहीं हुए होंगे कि ये भी खाई जा सकती है, ये फल भी खाया जा सकता है। और फिर एक एक फल की हजारों किस्में, दर्जनों किस्में। और अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु इरशाद फरमाते कि वफिल अर्द क़िताउम मुतजाविरात, अल्लाह ताला शानहु इरशाद फरमाते हैं कि एक ही जमीन है, एक ही जमीन। भाई ये प्लॉट मेरा और ये प्लॉट आपका, ये दो जमीनें अलग अलग तो हमने की ना, अल्लाह ने तो एक ही बनाई थी। एक ही किस्म की जमीन, एक ही किस्म का दरख्त इसमें लगाओ, उसी किस्म का दरख्त उसमें लगाओ, इसमें फल मीठा आ रहा है, उसमें फल खट्टा आ रहा है। युस्का बिमा वाहिद व नुफद्दिलु बादहा अला बादिन फिल उकुल, अल्लाह फरमाते हैं कि जमीन भी एक, पानी भी एक, लेकिन रिजल्ट अलग अलग। कैसी कुदरत है अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु की। ये प्लांट किंगडम जमीन पर है और फिर उससे आगे जो है पानी का भी किंगडम है, कुएं हैं, नहरें हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, और फिर इन पानियों से तैयार होने वाली हजारों मखलूक, इन पानियों के अंदर पता नहीं कितनी मखलूक रहती है, इन पानियों के अंदर पता नहीं कितनी मखलूक रहती है। एक मर्तबा हमें हमारे बारबेडोस के दोस्त डॉक्टर नकदी मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, वो मेरे मेजबान थे, तो बिल्कुल इब्तिदा में पहली मर्तबा जब हम गए थे तो उन्होंने कहा कि यहां जो है सब मरीन में समंदर की सैर कराते हैं, तकरीबन आध घंटे या पौन घंटे का वो सफर होता है, तो तुम्हें जरूर चलना चाहिए। तो मैंने कहा क्या करेंगे वहां जाकर, तो कहा कि नहीं तुमको अल्लाह याद आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा चलो फिर देखते हैं। तो वो आध घंटे पौन घंटे की सैर, ज्यादा से ज्यादा पौन घंटे की, आध घंटे या पौन घंटे की सैर वो कराते हैं, यानी एक ही समंदर के हिस्से में यूं घुमा करके ले आते हैं, और उसमें किस्मा किस्म की मछलियां, किस्मा किस्म के पौधे, दरख्त भी, कुछ पहाड़ भी, छोटे छोटे टीले, पहाड़ नहीं टीले। तो जब वो सैर करके हम निकले तो मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि हमने तो एक समंदर, समंदर जो जो का जो इहाता है पूरा, तो ये तो समंदर का एक कतरा भी नहीं होगा जो हमने देखा होगा, और उसमें इतनी किस्मा किस्म की मछलियां थी कि हमारी अकल हैरान, जहां नजर पड़े तो अलग किस्म, जहां नजर पड़े अलग किस्म, और एक एक किस्म की दर्जनों, झुंड का झुंड। तो मेरा दिल जो है वो कह रहा था कि फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, अल्लाह अकबर, समंदर के इतने छोटे से हिस्से को हमने देखा जिसमें ये मखलूकात है, तो पता नहीं अंदर क्या होगा। जो माहिरीन हैं उन्होंने ये कहा है कि जंगलों में जो जानवर रहते हैं आज तक दरियाफ्त नहीं कर सका उनको कोई कि कितने जानवर हैं। अभी भी माहिरीन ये कहते हैं कि बहुत से ऐसे सांप होंगे जो अभी हम दरियाफ्त नहीं कर सके होंगे। तो पता नहीं कीड़े मकोड़े हैं, हशरातुल अर्द, बहुत छोटे छोटे जिनको हम नीचे देखते हैं, तो ये जो है पानियों का एक मुस्तकिल सिलसिला, मखलूकात का एक मुस्तकिल सिलसिला, हैवानात का, गाय भैंस ये सब चीजें हमें नजर आती है, घोड़ा गधा, लेकिन जो चीजें नजर नहीं आती, जो जंगलों में रहते हैं जानवर, नई नई बातें मालूम होती रहती है कि ये कोई नई टाइप का लेपर्ड मिला है और नई टाइप का लायन मिला है, और दरियाफ्त करते रहते हैं छुप छुपा करके, जो अल्लाह की मखलूक रहती है, जो समंदरों में रहती है। और फिर ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बहुत से ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं कि हमें नजर भी नहीं आते, ये फ्लाइज कितनी किस्म की होती है। तो जंगल में, सहरा में, हवाओं में पता नहीं क्या क्या रहता होगा। तो ये पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, इन सबको खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है। एक बहुत बड़ी मछली जो है अपने से छोटी मछली को खाती है, अब ये जो छोटी मछली है वो अपने से छोटी को खाती है, वो अपने से छोटी को खाती है, तो अगर अल्लाह ना होता तो समंदर तो कब से खाली हो जाना चाहिए था। लेकिन हरेक का रिज्क अल्लाह के यहां मुकर्रर है, तो जितने रिज्क की जरूरत पड़ती है उतनी मछलियां भी पैदा होती रहती है। एक कीड़े, परिंदे कीड़ों को खाते हैं, तो कीड़ों की भी गिजा है, तो कीड़े कभी खत्म नहीं होते। एक निजाम चल रहा है, निजाम भाई, कभी तो किसी चीज में कमी आनी चाहिए ना। शॉप में हम जाते हैं तो कभी सुनते हैं कि ब्रेड खत्म हो गया है, तो ये परिंदे जो है कभी शिकायत नहीं करते कि कीड़े खत्म हो गए, परिंदे कभी शिकायत नहीं करते कि दाने खत्म हो गए हैं, बल्कि अल्लाह जल्ले जलालुहु आम मनवालुहु के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो परिंदों के बारे में ये इरशाद फरमाया है कि तगदु खिमासन व तरूहु बितानन, ये सारे परिंदे जब घोंसले से निकलकर उड़कर जाते हैं तो खाली पेट होते हैं, जब वापस रात को घोंसले में आते हैं तो पेट भरे हुए होने की हालत में आते हैं, एक भी परिंदा भूखा नहीं आता। وفی الارض آیات للموقنین. اور یہ سانپ جو ہے سانپ، ان سے پرندے بہت دور بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں سانپ، اس لیے کہ سانپ پرندوں کو کھا بھی جاتے ہیں، پرندوں کی غذا بھی ہوتے ہیں، پرندے سانپ کی غذا بھی ہوتے ہیں. تو کچھ ڈاکو لٹیرے، انہوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، اللہ جل جلالہ عام منوالہ ان کو ہدایت دینا چاہتے تھے. تو ڈاکو چور لٹیرے، ان کا اعتقاد اور نظریہ کیا ہوتا ہے کہ چوری نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے، چوری نہیں کریں گے تو دنیاوی ضرورتیں کہاں سے پوری کریں گے، یہی ہمارا ذریعہ معاش ہے. تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، اللہ ان کو ہدایت دینا چاہتے تھے، تو وہاں ان کی نظر پڑ گئی ایک سانپ پر. اور چونکہ جنگلوں میں رہتے تھے اس لیے ان کو اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ سانپ اندھا ہے. تو ان کا جو سردار تھا، بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا کہ اندھا سانپ کھاتا کہاں سے ہوگا. ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ ایک پرندہ آیا، وہ سانپ جو کر کے خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، پرندہ آیا اور پرندے نے آ کر چیں 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 کرنا شروع کیا اور اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہوئے وہیں رک گیا فضا میں اور سانپ کے اوپر، اور سانپ سے کہا چیں 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 چیں، تو سانپ نے اپنا سر اونچا کیا اور سر اونچا کر کے منہ کھولا، منہ کھولا تو وہ پرندہ جو ہے اس کے منہ میں کچھ ڈالنے لگا. وہ پرندہ گیا تھا کہ دوسرا آیا، دوسرا گیا کہ تیسرا آیا، تیسرا گیا کہ چوتھا آیا، اس طرح پرندے آتے رہے چیں چیں کر کے اس کا پیٹ بھرتے رہے. تو جو لوگ عبرت سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، عبرت سے دیکھنا چاہیے. تو اللہ کی کائنات میں نشانی آئے ہر چیز کے لیے. تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک اندھے سانپ کو میرا اللہ پرندوں کے ذریعے جو سانپ سے بھاگتے ہیں دور روزی پہنچا سکتا ہے، تو میں تو اشرف المخلوقات اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں کہ اللہ تعالی شانہ مجھے روزی نہیں پہنچا سکیں گے. اور توبہ کر لی اس نے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں توبہ کر چکا ہوں، اس سانپ کو دیکھ کر اللہ ہمیں بھی روزی پہنچائے گا. تو یہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی قدرت کی ساری نشانیاں ہیں. پھر جو ہے یہ وفی الارض آیات للموقنین، کہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، جو یقین کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے. یقین کی صلاحیت تو ہر ایک کو دی ہے اللہ نے، لیکن جو یقین ہی کرنا نہ چاہے، نمبر ایک غور و فکر نہ کرے، نمبر دو غور و فکر کرنے کے بعد یا کسی کے سمجھانے کی وجہ سے ان کے سامنے حق کھل جاوے پھر بھی وہ یقین کرنا نہ چاہے، جو یقین کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور جب قدرت کی نشانیاں ہیں تو پھر اس سے یہ اندازہ لگانا بہت آسان ہو جائے گا کہ جو اللہ ان سارے کاموں کو کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے ایک مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے. یعنی اللہ جل جلالہ عام منوالہ منکرین آخرت اور منکرین جزاء و سزا، منکرین باس بادل موت پر بھی کتنی شفقت فرما رہے ہیں کہ دوبارہ ان کی طرف توجہ کی کہ دیکھو ابھی بھی تم ایمان قبول کر لو. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ چلو آسمان کو چھوڑ کر ہم نے تم کو زمین میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا، اگر زمین میں بھی غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں تو بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، وفی انفسکم، تم خود اپنے نفوس میں غور و فکر کرو، خود اپنے وجود میں غور و فکر کرو، خود اپنی ذات میں غور و فکر کرو کہ اللہ تعالی شانہ نے یہ 6 فٹ کے انسان کو کیسے بنایا ہے. اعضا پر تم غور و فکر کرو کہ اللہ نے تمہیں سر دیا، سر کے ساتھ چہرہ، یہ اوپر کا حصہ سر ہے، سر جس میں چہرہ بھی آ گیا. اس سر میں کتنی قیمتی قیمتی چیزیں ہیں، دماغ ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، ناک ہے جو سننے کا کام کرتا ہے، یہ پورے جسم کا سب سے اشرف عضو ہے، سب سے شرافت والا عضو ہے. اسی لیے بندہ جب اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ادب کے ساتھ اور قیام کرتا ہے تو थोड़ी ही देर में जब कनेक्शन अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु से हो जाता है और अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु की कुदरत में गौर व फिक्र करता है और अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु के एहसानात में गौर व फिक्र करता है तो अब्दियत का उस पर गलबा होता है और उसका दिल ये चाहता है कि मैं झुक जाऊं तो रुकू कर लेता है, रुकू कर लेता है, रुकू में चला जाता है। और जैसे जैसे नमाज उसकी चलती रहती है और बहुत ज्यादा अब्दियत का गलबा होता है तो क्या करता है, अपने जिस्म का सबसे अशरफ हिस्सा उसी को जमीन पर रख देता है कि अल्लाह इससे ज्यादा आजीजी और तजल्लुल में नहीं कर सकता। और ये चूंकि सबसे अशरफ हिस्सा है इंसान के जिस्म का, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरों पर मारने से मना फरमाया है, यहां तक कि जानवरों को भी चेहरों पर दागने से मना फरमाया। मां बाप बच्चों को तमाचा मारते हैं चेहरे के ऊपर, कभी कभी मियां जी भी सबक पढ़ाते पढ़ाते तमाचा मारते हैं, ये ममनू है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, किसी को चेहरे पर नहीं मारना चाहिए, इसलिए कि यह अशरफ हिस्सा है बदन का, नंबर एक। और नंबर दो, इसमें इतनी कीमती कीमती चीजें हैं कि मारने के नतीजे में अगर कोई किसी जगह चोट पड़ गई तो बहुत बड़ा नुक्स वाके हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यूं भी मारने पीटने से एहतराज करना चाहिए और फिर चेहरे पर हाथ उठाए, तो एक एक उज्वा को देखिए, एक एक उज्वा की बनावट को देखिए कि कान को कैसे बनाया अल्लाह ने, आंखों को कैसे बनाया। एक तो है ना कि आंखें देखती है कान सुनते हैं, मगर बनाया कैसे कि चारों जिहत से कान सुन लेते हैं, सामने से कोई बोले तो भी सुन लेते हैं, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से जी। और एक वक्त में चलते चलते जितनी चीजों पे नजर रहनी चाहिए हर चीज पे नजर रहती है, दाएं भी नजर रहती है, बाएं भी नजर रहती है, आगे भी नजर रहती है। और अगर कोई चीज पीछे से आ रही है तो कान खबर दे देता है आंखों को कि पीछे देखो। और कभी कभी जो है वो कान भी फेल होते हैं, आंखें भी फेल हो जाती हैं, तो खुशबू बू से पता चल जाते हैं कि आग लगी हुई है। कैसा निजाम अल्लाह जल्ल जलालुहु वा अम्मन वालुहु ने बनाया। तो एक एक उज्व पर अगर कोई गौर व फिक्र करना चाहे तो ये कहा जा सकता है कि इंसान के जिस्म का एक एक उज्व अल्लाह जल्ल जलालुहु वा अम्मन वालुहु की हिकमत और अल्लाह जल्ल जलालुहु वा अम्मन वालुहु की कुदरत का दफ्तर लिए हुए है, सिर्फ एक एक जुज। और अगर कोई जहीन हो, उसे अल्लाह ताला शानुहु बसीरत अता फरमाए, तो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि पूरी जमीन में और पूरे आलम में अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु ने अपनी कुदरत की जितनी निशानियां पैदा की हैं वो सारी निशानियां अल्लाह ने समेट कर इंसान के 6 फुट के जिस्म में रख दिए। अगर कोई गौर करके इसको, इसीलिए अरबी में जिस्म को अल आलमुल असगर कहा जाता है कि एक तो आलम अकबर है ये कायनात अल्लाह की और दूसरा आलम असगर ये छोटा आलम है। और फिर इंसान अपनी बनावट पर गौर व फिक्र करे, बनावट पर, और बनावट पर गौर व फिक्र करे कि अल्लाह ने मेरे एक एक उज्वा को कैसे बनाया है। और फिर ये देखें कि अल्लाह ने मुझे दूसरों से कैसे अलग बनाया है, दूसरों से कैसे अलग बनाया है। हर एक की जहानत अलग, हर एक की होशियारी अलग, हर एक का हाफिजा अलग, कुव्वत हाफिजा मेमोरी, हर एक का रंग अलग, हर एक की खूबसूरती अलग, हर एक की दाढ़ी अलग। और ये चेहरा जो है, चेहरा लाखों अबजों इंसान दुनिया में आए हैं और ये चेहरे को देखिए आप, ये इस वक्त जितने हैं, चलो लाखों करोड़ों इंसान दुनिया में है इस वक्त, और ये चेहरा जो है कितने इंच का है, कोई चीज जितनी छोटी होती है उतनी ही उसकी मुख्तलिफ शक्लें बनाना मुश्किल, और जो चीज जितनी बड़ी होती है उतनी उसकी मुख्तलिफ शक्लें बनाना आसान। कि चेहरे को आप देख लीजिए कितना छोटा, लेकिन पूरी दुनिया में आपको दो आदमी ऐसे नहीं मिलेंगे जो आइडेंटिकल हो, हत्या के ट्विन्स भी आइडेंटिकल नहीं होते। कैसी कुदरत है अल्लाह जल्ले जलालुहु अम्मनो। इसी तरह पत्तों को देख लीजिए, दो पत्ते आपको एक दरख्त पर आइडेंटिकल नहीं मिलेंगे, बल्कि मुख्तलिफ दरख्तों पर भी दो पत्ते आपको आइडेंटिकल नहीं, दो फूल आइडेंटिकल नहीं मिलेंगे, दो जानवर आपको आइडेंटिकल नहीं मिलेंगे। ये कितनी बड़ी कुदरत है। और फिर मजीद कि इंसान को चाहिए कि अल्लाह की कुदरत को पहचानने के लिए अपनी पैदाइश से शुरू करे। अल्लाह जल्ले जलालुहु व अम्मन वालुहु ने अपनी मखलूकात में से किन चीजों से एक नुतफा पैदा किया और उसको रहम मादर में पहुंचाया, औरत की रहम में पहुंचाया, और वहां मुलाकात हुई दूसरे नुतफे से, औरत के नुतफे से, और वो दोनों आपस में मिले। ثم خلقنا النطفة علقة, फिर अल्लाह जल्ले जलालुहु व अम्मन वालुहु ने उसे जमा हुआ खून बनाया, मुंजमित खून। فخلقنا العلقة مدغة, फिर वो मुंजमित खून गोश्त का लोथड़ा बन गया। فخلقنا المدغة عظاما, फिर वो गोश्त के लोथड़े को और ज्यादा अल्लाह जल्ले जलालुहु व अम्मन वालुहु ने मजबूत बनाया और वो हड्डियां बन गया, और फिर इन हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाया। फकसौन अलइज़ाम लहमा, अल्लाह ताला शानहु इरशाद फरमाते कि पहले ये गंदा मनी का कतरा था और अब क्या हो गया। सुम्मा अंशानहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह बहुत बुलंद बालातर है जो अहसनुल खालिकीन है, पैदा करने वालों में बेहतरीन। और इंसान मखलूक जो कुछ भी बनाती है वो अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु की चीजों को देख करके बनाती है। परिंदों के अमल को देखकर एरोप्लेन बनाया, और मछलियों के तैरने को देखकर कश्ती बनाई। इसी तरह दूसरी चीजें, और अगर कोई ऐसी चीज भी बना डाले जिसकी अल्लाह की मखलूक में नजीर ना हो, तो ये जहानत किसने दी है, ये भेजा किसने दिया है, ये ब्रेन किसने दिया है। तो अल्लाह जल्ले जलालुहु व अम्मन वालुहु ने ये इंसान बनाया किस तरह, और फिर उसके लिए पेट में से निकलने का रास्ता, सुम्मत सबील यस्सर, तंग रास्ते से निकाला। यानी कोई इंसान सोच नहीं सकता, अगर किसी को इसका इल्म न हो और उसे कहे कि इतनी साइज का बच्चा इतने तंग रास्ते से निकलता है सही सालिम, और फिर उसके लिए मां की छाती से दूध की नहरें जारी कर दी। ये सिर्फ रो सकता है, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह जल्ले जलालुहु व अम्मन वालुहु उसकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। उसके रोने धोने से मां समझ जाती है कि इसको पेट में दर्द हो रहा है, या इसको बीमारी है, या इसको भूख लगी है, या ये किस किया है, डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है या क्या। फिर जैसे जैसे वो बढ़ता है तो दूध से हल्की गिजा पर आता है, और फिर भारी गिजा पर आता है, और पता नहीं क्या किया उसके वजूद के लिए, उसके बका के लिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया है, और फिर उसकी बका के लिए इन चीजों की जरूरत है। गाड़ी के लिए पेट्रोल की जरूरत है, मगर पेट्रोल में कोई लुत्फ नहीं है। इंसान के बका के लिए जिन जिन गिजाओं की जरूरत है, जिन जिन चीजों की जरूरत है, अल्लाह ने उसमें लुत्फ रखा है। उसे सूरज की गर्मी की जरूरत है, लोग सन बेदिंग में लुत्फ महसूस करते हैं। उसे हवा की जरूरत है, तो हवा के झोंकों में बैठने में लोग लुत्फ महसूस करते हैं। उसे गुस्ल करने की जरूरत है, तो गुस्ल करने में लोग लुत्फ महसूस करते हैं, ठंडे पानी से, गर्म पानी से। खाने पीने की चीजों में विटामिन है, फुना चीज है, फुना चीज है, फुना चीज है, फल फ्रूट सब्जियां गोश्त लुत्फ ले लेकर के खाते हैं। लियाकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु अयदीहिम, और फिर एक एक चीज जो खाने की अल्लाह ने दी, एप्पल ऑरेंज, तो एप्पल जानवर खाता है तो सिर्फ एप्पल खा सकता है, ऑरेंज सिर्फ ऑरेंज खा सकता है। इंसान एप्पल भी खा सकता है, ऑरेंज भी खा सकता है, ऑरेंज का जूस भी बनाकर के खा सकता है, एप्पल का जूस बनाकर पी सकता है, एप्पल का जूस बना के पी सकता है, एप्पल का मुरब्बा जाम बना करके खा सकता है। एप्पल से कितनी चीजें बनती हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सब कुछ हमने इसलिए उगाया है ताकि मेरे बंदे इन फलों को भी खाए और इन फलों से उनके हाथ जो कुछ बनाए उसको भी खाए। अफला यशकुरून, फिर भी ये शुक्र नहीं करते। और शुक्र का सबसे पहला काम ये है शुक्र के नतीजे में कि उस खाली के कायनात को पहचाने, इन नेमतों को देने वाले को पहचाने और पहचान कर ईमान ले आए। और आखिरी बात कि इस इंसान को पैदा किया, गिजा वगैरह सारा इंतजाम किया और इंसान को खुद को एक मशीनरी बना दिया। उसकी जरूरत की और भी चीजें हैं, पेट में जो चीजें जाती हैं उसमें मुफीद भी होती हैं, गैर मुफीद भी होती हैं, उनको निकालना है। तो एक ही रास्ते से चीजें पेट में जाती हैं, निकलती हैं दो रास्ते से। फिर इंसान को आराम के लिए सोने की जरूरत पड़ती है। इंसान जब सोता है तो पूरे दिन में चलने फिरने की वजह से जो वेयर एंड टेयर होता है, मसल्स जो है, मसल्स उसमें भी वेयर एंड टेयर होता है। मसल्स है जिस्म में, दिमाग है। तो जैसे ही इंसान सोता है तो ये अगर अच्छी क्वालिटी स्लीप उसको मिल जावे तो 24 आवर्स में जितना भी डैमेज हुआ है, जितना उसमें वेयर एंड टेयर हुआ है, वो दोबारा दुरुस्त हो जाता है। इसीलिए उठने के बाद इंसान जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। जोड़ों में दर्द है, मसल्स में दर्द है, थका हुआ है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ पढ़ना चाहता है तो पढ़ा भी वो आंखों से देखा नहीं जाता, लेकिन जैसे ही बेदार होता है सारे सब ठीक। ये मशीनरी किसने चला रखी है? जरूरत पड़ती है तो खुद ब खुद नींद आ जाती है, जब जरूरत पूरी हो जाती है तो खुद ब खुद आंख खुल जाती है, इस्तिंजे का तकाजा होता है तो नींद से भी आंख खुल जाती है। किसने ये सारा निजाम चलाया? तो जो इतना कादिर है, इतना कादिर है, इतना कादिर है, इतना कादिर है कि लाखों करोड़ों इंसानों में ये सिस्टम पैदा कर रखी है और वो सिस्टम खुद ब खुद चल रही है, वो एक इंसान को पैदा करने पर कादिर नहीं है। एक इंसान को दोबारा से जिंदा करना है। वो फिल अर्द आयातुल लिलमुकीनीन वफी अनफुसिकुम, खुद तुम्हारे वजूद में भी देखो। आगे अल्लाह फरमाते कि अफला तुबसिरून, क्या फिर तुम देखते नहीं? देखो यहां अजीब उसलूब इख्तियार किया है अल्लाह ताला शान हो। ये नहीं फिर कि अफला ताकिलून, क्या तुम समझ नहीं पा रहे हैं? अफला तुबसिरून, तुबसिरून का माना देखना है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह जल्ला जलालुहु वाम मनवालुहु की जमीन में और खुद इंसान के जिस्म में अल्लाह के वजूद की, अल्लाह की वहदानियत की और अल्लाह की कुदरत की इतनी सारी निशानियां हैं कि ज्यादा अकल से भी काम लेने की जरूरत नहीं, वो देखते ही अकल हरकत में आ जाएगी। तो अल्लाह ताला शानहु ये फरमाना चाहते हैं कि इतनी सारी निशानियां होने के बावजूद भी अगर किसी की अकल इस बात को कबूल नहीं कर रही है कि अल्लाह मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर है, इसका मतलब यह कि ये आंखों के अंधे हैं, अंधे हैं, इन्होंने देखा ही नहीं है कुछ। और हकीकत भी यह है कि इस नजरिए से देखते ही नहीं। अफला तुम सिरून, क्या तुम देखते नहीं? इसके बाद आगे अल्लाह ताला शानहु इरशाद फरमाते हैं कि वफी समा रिज़्कुकुम वमा तुआदून, दोबारा वही मजमून है। दो एतराज उनके होते थे। पहला एतराज क्या होता था कि मरने के बाद जो चीज गल सड़ जाती है उसे अल्लाह दोबारा कैसे पैदा करेंगे, कैसे जिंदा करेंगे, कैसे वजूद देंगे? उसके लिए दलील दी कि उसके लिए क्या चाहिए। एक मरी हुई चीज, एक चीज जो रेजा रेजा हो गई, उसे दोबारा जिंदा करने के लिए क्या चाहिए? कुदरत चाहिए। तो कहा कि वफिल अर्द आयातुल लिलमुकीनीन, जमीन में देखो कुदरत है कि नहीं, तुम्हारी खुद के जिस्म में देखो कि अल्लाह कादिर मुतलक है कि नहीं। तो जिसके पास ये सारी कुदरतें हैं वो मरने मरे हुए इंसानों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं है? दूसरा उनका एतराज किया था कि क़यामत कब आने वाली है, जरा वक्त तो बताओ। जब तारीख ही आपको मालूम नहीं है तो हम कैसे मान ले? तो अल्लाह जल्ल जलालहू आम मनवालो इरशाद फरमा दे कि वफी समा ए रिज़्कुकुम, रिज़्कुकुम को थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए, वफी समा ए मातु अदून, आसमान में वो चीज है जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आसमान में एक जगह है जिसे अल्लाहुल महफूज कहते हैं, तो अल्लाहुल महफूज में वो तारीख लिखी हुई है। ये जो तुमसे वादा किया जा रहा है, पहले जवाब जो है वो हाकिमाना था कि कयामत कब होगी ये बता दो, चलो दोबारा जिंदा होकर के कब उठना है। अब यहां हकीमाना जवाब दिया जा रहा है, यहां दलील दी जा रही है कि लौहे महफूज में वो तारीख लिखी हुई है कि कयामत कब वाकई होगी और तुमको कब दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा और तुम्हें कब अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। और बतौर दलील के बीच में ले आए रिज़्क़ुकुम, ये दलील है, ये दलील है कि जिस तरह कियामत के वाके होने की तारीख ऊपर लिखी हुई है लोहे महफूज में, इसी तरह किसको कितनी रोजी किस वक्त मिलेगी ये भी ऊपर लिखा हुआ है। अब तुम सब दुनिया में रहते हैं और सब रिज्क को मानते हैं कि रोजी मुझे मिलेगी, अल्लाह को मानने वाला भी मानता है और अल्लाह को न मानने वाला भी, आखिरत को मानने वाला भी और आखिरत को न मानने वाला भी, सब जानते हैं कि रोजी मुझे मिलेगी। अब हम उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी रोजी किस वक्त आएगी, ये तुमको पता है, तारीख तुमको पता है? भाई मेरी आज की जो रोजी है, आज का मेरा खाना है, कल का खाना है, परसों का खाना है, तरसों का खाना है, तो कभी कभी रोजी हमारे घर में पूरे साल की आ जाती है। और बेचारा वो फकीर जिसके घर में कुछ नहीं, वो रोजाना निकलता है काम करके, रोजाना की रोजी लाता है। किसी को एक दिन की रोजी मिल जाती है, किसी को कभी पांच दिन की मिल जाती है, किसी को कभी एक साल की मिल जाती है। तो तुम्हारी जो रोजी मुकर्रर है, तुम सब जानते हैं, अल्लाह को न मानने वाली भी कि मेरी रोजी मुझे मिलेगी अपने वक्त पर, तो इसका तुमको पता है कि किस वक्त मिलेगी? आज शाम का खाना जो तुम्हारा है तो किस तारीख को तुम्हारे घर में आएगा तुमको मालूम है? नहीं मालूम, फिर भी तुम मानते हो कि नहीं कि रोजी मुझे मिलेगी। तो रिज्क कब मिलेगा, रिज्क का वक्त न मालूम होने के बावजूद भी तुम ये तस्लीम करते हो कि रिज्क मिलेगा, तो फिर कियामत की तारीख न मालूम होने के बावजूद भी कियामत वाके होगी, इसको तस्लीम करने में क्या हर्ज है तुमको? ये खामखा का बहाना है तुम्हारा। क्या सिर्फ ये कियामत ही एक चीज है कि जिसकी तारीख मालूम नहीं है इसलिए नहीं मानते, और कोई चीज नहीं है जैसे रिज्क, मगर मानते हैं सब। तो कहा कि जिस तरह तुम्हारी रोजी लोहे महफूज में लिखी हुई है कि फुला वक्त पर तुमको तुम्हारी रोजी मिलेगी, हालांकि तुमको वक्त मालूम नहीं है, इसी तरह लोहे महफूज में लिखा हुआ है कि फुला वक्त पर कयामत कायम होगी और तुम्हें जिंदा किया जाएगा और तुम्हें अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा, हालांकि तुम्हें मालूम नहीं है। एक दलील है बीच में, वो भी समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, कि आसमान में यानी लोहे महफूज में तुम्हारी रोजी भी लिखी हुई है और वो भी लिखा हुआ है जिसका तुमसे वादा किया जाता है कि कयामत कब होगी। जब रोजी को बगैर तायीन तारीख के तस्लीम करते हो तो कयामत के वुकू को बगैर तायीन तारीख के क्यों तस्लीम नहीं कर सकते? और अब जो है अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु इस मजमून को खत्म कर रहे हैं कि फवरब्बिस समाई वल अर्द, दोबारा उसी को, फवरब्बिस समाई वल अर्द, तुम मानो ना मानो आसमान और जमीन के रब की कसम, इन्नहु लहक्कुन, कयामत के दिन का वुकू हक है, वो होकर रहेगा, वो वाकई होकर रहेगा, कयामत के दिन का वुकू हक है। और उसके लिए फिर मिसाल दी, मिसल मा अन्नकुम तंतिकून, जैसा कि ये बात कि तुम बोलते हो। एक शख्स जब बोलता है, गुफ्तगू करता है, तो उसे यकीन होता है कि मैं बात कर रहा हूं, तो जितना तुम्हारे बोलने पर तुम्हें यकीन है उतना ही तुम्हें कयामत के दिन के वाके होने पर यकीन होना चाहिए। इस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, दुनिया के सारे ओकला जमा हो जाए और मुझे समझाने की कोशिश करे कि ना तुम बोल नहीं रहे हैं, तुम्हारी जुबान से नुत्क का अमल वजूद में नहीं आ रहा है, मैं मानने के लिए तैयार हूंगा ना? तो जितना तुमको तुम्हारे बोलने पर यकीन है, तुम्हें कियामत के वाके होने पर उतना ही यकीन होना चाहिए। दुनिया के सारे ओकला जमा होकर के कह दें कि कियामत जैसी कोई चीज नहीं है, फिर भी तुम्हारे यकीन में तजब्जुब नहीं आना चाहिए। अब दो बातें बाकी रह जाती हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह जल्ला जलालुहु आम मनवालुहु ने तशबीह नुत्क से और बोलने से दी, ये क्यों? अल्लाह ने यह क्यों इरशाद फरमाया कि कयामत का वाके होना इतना ही यकीनी है जितना तुम्हारा बोलना। ये फाइव सेंसेस हवास्य खमसा में से एक सेंस है, एक हास्सा है, बोलना। जुबान बोलती है, जुबान बोलती है। इसके अलावा और चीजें हैं कि और हवास्य खमसा में से ऐसा क्यों नहीं कहा कि कियामत का वाके होना इतना ही यकीनी है जैसा तुम्हारा देखना। मैं अगर चांद को देखूं तो दुनिया के सारे ओकला मुझे कहे कि ये चांद नहीं है, मैं मानूंगा? नहीं मानूंगा। या एक सुनना, जैसे आप लोग मेरी बात अभी सुन रहे हैं, तो अगर दुनिया के सारे ओकला ये कहे कि सलीम बोल नहीं रहा था और तुम सुन नहीं रहे थे, तो तुम मानोगे कि नहीं हम सुन रहे हैं? तो ऐसा क्यों नहीं कहा कि कियामत का वाकई होना इतना ही यकीनी है जितना तुम्हारा सुनना, या जितना तुम्हारा देखना, या जितना तुम्हारा सूंघना, या जितना तुम्हारा चखना, या जितना तुम्हारा फील करना, छूना, महसूस करना, ये ऐसा क्यों नहीं कहा? तो उसके दो जवाब हैं। पहला जवाब ये है कि बोलना एक ऐसी चीज है कि उसमें किसी किस्म का शुभा वाक्य नहीं हो सकता। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं उनमें शुभा वाक्य हो सकता है। जैसे एक आदमी देखता है और देखने में उसके आंखों में आंसू आ गए, पानी से भर आई आंखें, और उसको कोई कहे कि तुमने सलीम को नहीं देखा था, तुमने तो अब्दुल्ला को देखा था, तो वो शुभे में पड़ जाएगा कि हाँ यार आंख में आज मुझे कुछ तिनका पड़ गया था, या आंख मेरी सुन रहे हैं और सुनते सुनते जो है एक बहुत आवाज भी आई, कोई खांसी भी कर रहा है और सुना, और कोई कहे कि नहीं वो सलीम नहीं था, वो हाफिज अहमद अली थे, तो आप सोचेंगे कि दोनों की आवाज मुशाबे हो सकता है कि हाफिज अहमद अली हो, देखो शुभा पड़ जाता है। नाक जो है, नाक ये कभी कभी काम करना बंद कर देता है, बहुत कम सूंघता है, साइनस वगैरह हो जाए तो कोई आपको कहे कि नहीं नहीं बदबू तो नहीं थी, तो कहा अच्छा ठीक है मेरी नाक में वैसे भी। जुबान जो है कभी बुखार की वजह से कड़वी हो जाती है, आप कहे कि यार बहुत कड़वा मेलन था, लोग कहे कि नहीं नहीं कड़वा नहीं था, बहुत मीठा था, अच्छा मैं बीमार हूं, देखो शुभा पड़ जाता है। लेकिन बोलना एक ऐसी चीज है कि उसमें किसी किस्म का शुभा नहीं होता। तो क्या जितना तुमको तुम्हारे बोलने में यकीन है उतना ही तुम्हें वो कोई कयामत में यकीन होना चाहिए कि कयामत वाकई होगी और मरने के बाद तुमको दोबारा जिंदा किया जाएगा और जजा और सजा होगी। और दूसरी तौजीह जो बयान की गई है वो बहुत मजे की है। दूसरी तौजीह ये है कि इंसान जब किसी चीज पे गौर फिक्र करता है तो कुछ नताइज पर पहुंचता है वो गौर फिक्र करने के बाद। मैं अभी जो बोल रहा हूं तो गौर फिक्र करके बोल रहा हूं, तो जब इंसान गौर फिक्र करता है तो गौर फिक्र करने के नतीजे में कुछ नताइज पर पहुंचता है, और ये नताइज जो है वो मुंतशिर होते हैं, फैले हुए होते हैं, और फिर इंसान जो है उन नताइज को लोगों को समझाने के लिए अल्फाज का सहारा ढूंढता है, वो अल्फाज भी मुंतशिर होते हैं। तो किसी चीज पे गौर फिक्र जब करता है, किसी भी चीज पर, मिसाल के तौर पर मुझे आप कोई मशवरा पूछे कि मैं बीमार हो गया हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं गौर फिक्र करूंगा, तो गौर फिक्र करूंगा तो मेरे जहन में मुंतशिर बातें आएंगी। अब आपके सामने उसका इजहार जुबान से हो सकता है, तो वो जो बातें मेरे जहन में है उनके लिए इंसान वर्ड्स को तलाश करता है, तो मुख्तलिफ वर्ड्स आएंगे, उन मुख्तलिफ वर्ड्स को मुरक्कब करता है, और मुरतब करके जुबान से अदा करता है कि मेरी राय यह है कि आप फौरन ए एंड ई में चले जाओ, और जुबान पर जब यह अल्फाज आए कि मेरी राय यह है कि आप ए एंड ई में चले जाओ, ये जुबान पर गोया तखलीक हुई एक इबारत की, एक पैदा किए गए अल्फाज, और फौरन मर भी गए, वो मिट गए, मिट गए। दूसरा शख्स आया और उसने ये कहा कि मैं बीमार हो गया हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो दोबारा गौर व फिक्र किया, दोबारा गौर व फिक्र करने के बाद वही ख्यालात, मुंतशिर ख्यालात आए, उनकी ताबीर के लिए अल्फाज ढूंढे गए, अल्फाज को मुरक्कब किया, जोड़ा गया, और जोड़ करके कहा गया कि आप, मेरा ख्याल ये है कि आपको ए एंड ई में चले जाना चाहिए। तो ये नुत्क को इसलिए बयान किया कि इंसान बोलता है और बोली हुई चीज मिट जाती है, फिर बोलता है, बोली हुई चीज फिर मिट जाती है, फिर बोलता है, बोली हुई चीज मिट जाती है, मिटती है मगर इंसान उसको दोबारा वजूद में ला सकता है, मिटती है मगर इंसान दोबारा वजूद में ला सकता है। एक इंसान अल्फाज के मिटने के बाद दोबारा उनको वजूद देने पर कादिर है, तो खाले के कायनात अहकमुल हाकिमीन इंसान के मिट जाने के बाद दोबारा उसको वजूद देने पर कादिर नहीं है। इन्नहुल हक्कुम मिस्लमा अन्नकुम तंतिकून, बेशक दोबारा जिंदा होना यह हक है, उसी तरह जिस तरह के ये बात है कि तुम बोलते हो। अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु हमारे दिलों में मरने के बाद की हकीकत जो है वो पुख्ता फरमा दे, और पुख्ता फरमाने के बाद ये आगे वाली बात के मरने के बाद जिंदा होना है, जिंदा होकर जजा और सजा है, अच्छे का बदला मिलेगा, बुरे का भी बदला मिलेगा, अच्छे का बदला जन्नत की शक्ल में, बुरे का बदला अजाब की शक्ल में। ये दिल में एक इस्तेहजार पैदा करे और मुराकबा करे, मुहासबा करे अपना, बैठे कि मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरी जैसी जिंदगी है अगर जिंदगी वैसी ही रही तो अल्लाह के सामने जब मैं खड़ा किया जाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा, मुझे जन्नत मिलेगी या सजा मिलेगी। और अगर जवाब ये आता है कि जन्नत मिलेगी, मैं अच्छे काम कर रहा हूं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और मजीद उसमें तरक्की करे। और अगर जवाब यह है कि नहीं, मेरी जिंदगी इतनी बुरी है कि अगर इस वक्त मेरी मौत आ जाए और फिर कयामत के दिन मुझे खड़ा किया जाए अल्लाह के सामने और मेरा हिसाब किताब हो, तो मुझे जन्नत तो नहीं मिलेगी, मुझे तो सजा ही मिलेगी, तो फिर तौबा करें, इस्तिगफार करें और अपनी जिंदगी को दुरुस्त करें। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात यह है कि वफी समाई रिज़्कुकुम, आसमान में तुम्हारी रोजी लिखी हुई है, तो वहां तय है लोहे महफूज में। जो चीज आसमान में लोहे महफूज में लिखी हुई है, तय है, आसमान में है, लिखी हुई है, तय है, तो उसके बारे में बकदरे जरूरत फिक्र करनी चाहिए। शाफी अल्लाह है, अल्लाह ही शिफा देता है, लेकिन दवा दारू हम क्यों करते हैं, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तरीका बतलाया है, उनकी इत्तिबा में हम ये काम करते हैं। रोजी अल्लाह ही देता है, फिर तगोदो क्यों करते हैं, कमाने की कोशिश क्यों करते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने हमें हुक्म फरमाया है। इसके भी हम मुकल्लफ हैं कि तुम सही तरीके से रिज्क कमाने की कोशिश करो। तो आदमी हलाल के दायरे में रहकर अपनी जरूरत के बकदर कमाने की कोशिश करे। हलाल के दायरे से निकलेगा तो अल्लाह के यहां मुजरिम होगा, और जरूरत से ज्यादा कमाने के नतीजे में अगर अल्लाह के हुक्म की पामाली नहीं होती तो कोई हर्ज नहीं। मसलन एक शख्स यह तय कर लेता है कि मैं अगर रोजाना 8 घंटे काम करूंगा तो अल्लाह के हुकूक भी पूरे कर सकूंगा और अल्लाह के बंदों के हुकूक भी पूरे कर सकूंगा, और 8 घंटे तक काम करता है। यानी 3 सिनारियो हम ले लेते हैं। एक शख्स तो वो है जो 8 घंटे काम कर सकता है, उसको मौका है 8 घंटे कमाने की, और 8 घंटे अगर वो कमाने के लिए जाता है तो अल्लाह के और अल्लाह के बंदों के हुकूक में कोई कमी नहीं आएगी, अल्लाह के यहां पकड़ नहीं होगी। बीवी बच्चों के हुकूक भी अदा करेगा, मां बाप के हुकूक भी अदा करेगा, नमाजें वगैरह सब पढ़ेगा, और उसका इतना ही इनकम है 8 घंटे में कि उसको काफी हो जाता है, तो ये काम करे 8 घंटे। दूसरा आदमी पांच घंटे काम करेगा तो उतना मिल जाएगा जितना उसको काफी है, और आठ घंटे काम करेगा तो ज्यादा मिलेगा। और आठ घंटे काम करने में हुकुम भी पामल नहीं होते तो कोई हर्ज नहीं, अल्लाह ने तुझे बरकत दी है। तो दो शक्लें हैं, पांच घंटे काम कर अल्लाह की और अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा कर, और तीन घंटे ज्यादा मिलते हैं उसमें और नेकी कर, और ये भी शक्ल है कि तीन घंटे और काम करके ज्यादा पैसे कमा, और ये जो ज्यादा पैसे तेरे पास आ रहे हैं उससे आखिरत कमा सही जगहों पर खर्च करके। और तीसरा आदमी वो है कि पांच घंटे में उसको इनफ मिल जाता है खुद को और फैमिली को संभालने के लिए, और अगर वो छठा सातवां या आठवां घंटा काम करेगा तो अल्लाह के हुकूक को पूरा नहीं कर सकेगा, अल्लाह के बंदों के हुकूक को पूरा नहीं कर सकेगा। तो ऐसे आदमी को ये तीन घंटे जायद काम नहीं करना चाहिए, बस पांच घंटे पर इक्तिफा करे, उससे अपना पेट भर ले और काफी बस। यानी अपनी दुनियावी जरूरतें पूरी हो जाएं, इतना काम अगर हो रहा है, इतनी रोजी मिल रही है, तो फिर अल्लाह जल्ला जलालहू आम मनवा लो कि नाफरमानी करने की क्या जरूरत। तो दो चीजें याद रखो, एक तो एक काम इतना करो कि जिसके नतीजे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक पामल न हो, इतने आवज के लिए काम करो। और नंबर दो, ऐसा काम करो और ऐसा जरिए माश इख्तियार करो जो हलाल का है। क्यों? इसलिए कि रोजी बकदरे मुकद्दर, रोजी के मामले में अल्लाह का ये हुक्म है, अल्लाह का ये कानून है, रोजी बकदरे मुकद्दर, जितना मुकद्दर में है उतना ही मिलेगा। और दीन बकदरे मशक्कत, दीन में इंसान जितनी मेहनत करेगा उतनी तरक्की करेगा। तो यहां क्या कहा अल्लाह ने कि वफी समाए रिज़्कुकुम, तुम्हारी रोजी तो आसमान में लिखी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लव अन्न अहदकुम फर्र मिन रिज़्किही, अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में जितनी रोजी लिखी है अगर तुम में से कोई अपनी रोजी से भागेगा तो लतबिअहु, तो वो रोजी पीछा करेगी उसके, उसका कमा यतबउहुल मौत, जैसे कि मौत उसका पीछा करती है। जैसे मौत पीछा करती है वैसे ही रिस्क पीछा करेगी, वो कहीं नहीं जाएगी, रोजी जितनी मुकद्दर में लिखी है वो मिलकर रहेगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को ये इरशाद फरमाया कि तुम दोनों रोजी के बारे में गम में मत पड़ना, फिक्र में मत पड़ना जब तक कि तुम जिंदा रहो। इसलिए कि इंसान को जब उसकी मां जनती है तो वो सुर्ख रंग का होता है और उसके ऊपर कपड़े ओपड़े कुछ नहीं होते, गोया वो बहुत छोटा सा होता है और उस वक्त जो है वो गोश्त के सुर्ख लोथड़े जैसा लगता है, जो सुर्ख रंग का है उस पर कुछ भी नहीं होता, यानी वो दुनिया में खाली आता है। लेकिन रिज्क उसको कौन पहुंचाता है? अल्लाह पहुंचाते हैं। उस बच्चे को कौन रोजी पहुंचाता है जो तगोदो नहीं कर सकता? और एक इमाम असमाई रहिमहुल्लाह ताला, बड़े इमाम गुजरे हैं, उन्होंने अपना एक वाकिया बयान किया है कि मैं एक मर्तबा बसरा की जामे मस्जिद से निकला और निकलकर एक जिहत में जाने लगा कि अचानक एक देहाती की मुझसे मुलाकात हो गई। वो ऊंटनी पर बैठा हुआ था और उसने अपनी तलवार पहनी हुई थी और हाथ में कमान भी थी, तीर भी थे। वो करीब आया मेरे, मुझे देखा तो, और उसने मुझे सलाम किया और सलाम करके मुझे कहा कि आप कौन हैं, किस खानदान से आपका ताल्लुक है? तो मैंने कहा कि बनू असमा से मेरा ताल्लुक है। तो उन्होंने कहा आप असमाई हैं? मैंने कहा कि जी हां। कि अभी आप कहां से आ रहे हैं? तो मैंने कहा कि मिन मौदीन युतला फी है कलामुर रहमान, मैं ऐसी जगह से अभी आ रहा हूं जहां रहमान ताला के कलाम की तिलावत की जाती है, यानी जामी मस्जिद से मैं निकला हूं जहां हक ताला शानहु के कलाम की तिलावत लोग करते हैं बैठकर। अब ये बेचारा देहाती था, अनपढ़ था, तो उसने कहा कि वली रहमान कलामुन यतलूहुल आदमीयुन, अच्छा रहमान ताला अल्लाह इतना बड़ा उसका कोई कलाम भी है जिसे इंसान पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि जी हां, अल्लाह का एक कलाम है जिसे इंसान भी पढ़ सकते हैं। तो उसने कहा कि फिर मेरे ऊपर उसका बाद हिस्सा पढ़ो, मुझे पढ़कर सुनाओ। तो इमाम असमई रहमहुल्लाह ताला फरमाते कि मैंने सूरह धारियात की तिलावत शुरू की। देखो उस जमाने का माहौल कितना अच्छा था, इमाम असमई कहीं सफर करके जा रहे हैं, वो भी इधर से आ रहा है और उसने कहा कि मुझे पढ़कर सुनाओ, और इतना बड़ा इमाम, हमारे जमाने में तसव्वुर कीजिए कि ऐसा मुमकिन है या नहीं। इमाम असमई रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने वज़्ज़ारियात ज़रवन फल हामिलात विक्रन फल जारियात युसरन फल मुकस्सिमात अमरा की तिलावत शुरू कर दी और पढ़ते पढ़ते मैं यहां पहुंचा, वफिस समा ए रिज़्क़ुकुम, तुम्हारी रोजी तो आसमान में है और वो भी आसमान में है जिसका तुमसे वादा किया जाता है। बाद हजरत मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि तुम्हारी रोजी भी आसमान में है और जो खैर और शर जिसका तुमसे वादा किया जाता है वो भी आसमान में लिखा हुआ है, और खैर और शर के अंदर बास बादल मौत भी आ गया और जजा सजा भी आ गई का सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है। तो इमाम असमई रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं यहां पहुंचा कि वफिस समा इरिज़्कुकुम वमा तुअदून, तो वो बोल पड़ा कि या असमई हसबुक, ए असमई बस करो। और कहते हैं कि वो ऊंट से उतर गया और ऊंट से उतर कर उसने ऊंट को जबह कर डाला, और ऊंट को जबह करने के बाद गोश के टुकड़े किए और उसने मुझे कहा कि मेरी मदद कीजिए इसको तकसीम करने पर। तो कहा कि जो भी वहां से गुजर रहा था, हमने किसी को आधा किलो किसी को एक किलो हमने गोश तकसीम कर दिया। कहा कि फिर उसने अपनी तलवार का कसद किया और अपने कमान और अपने तीरों का और उन सबको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद उसने रुख किया जंगल का, और वो ये कह रहा था कि वफिस समा इरिज़्कुकुम वमा तुअदून, वफिस समा इरिज़्कुकुम वमा तुअदून, वफिस समा इरिज़्कुकुम वमा तुअदून। यानी इतना यकीन उसे पैदा हो गया कि रोजी का फैसला तो आसमान से होता है, तो ये तीर और कमान और ये शिकार करना और उसके लिए मेहनत करना, ये ऊंट क्या जरूरत है, जंगल में चला गया वो और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया होगा। इमाम असमई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मुद्दत गुजरी, उसके बाद हारून रशीद के साथ मैंने हज किया। इस दरमियान में कि मैं तवाफ कर रहा था, तवाफ के दौरान मैंने एक हल्की सी और बारीक सी आवाज सुनी कि मुझे कोई पुकार रहा था पीछे से, तो मैंने मुड़ करके देखा तो मैंने देखा कि वही साहिब हैं। अब वो ऐसे मुजाहदे वाली जिंदगी गुजारने लग गए थे आखिरत अपनी बनाने के लिए, कहा कि नहीव हो चुके थे वो और रंग जर्द था। उन्होंने मुझे सलाम किया और मेरा हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ करके मुझे मकाम इब्राहिम के पीछे लेकर के बैठ गए और मुझसे कहा कि उतलू अलैया कलाम अर रहमान, रहमान ताला का कलाम मुझे पढ़ करके फिर सुनाइए। ये कहते कि मैंने फिर वज़्ज़ारियात शुरू कर दी, और वज़्ज़ारियात पढ़ते पढ़ते मैं जब यहां पहुंचा कि वफिस समा इरिज़्कुकुम वमा तुअदून, तो देहाती बोला कि लकद वजदना मा वअदना रब्बुना हक्का। उसने कहा कि हमारे रब ने हमसे जो वादा किया है कि तुम्हारी रोजी में पहुंचा के रहूंगा, कई इस वादे को तो हमने बरहक पाया, इसलिए कि सारे असबाब छोड़ दिए फिर भी अल्लाह इतने सालों तक रोजी पहुंचाता रहा। और फिर उसने कहा कि ये बात तो हो गई, हल गैरो हादा, क्या और भी कुछ है वो पढ़ करके सुनाइए। कहते कि गुज़िश्ता मरतबा तो यहीं तक तिलावत हुई थी, तो मैंने आगे पढ़ा कि फवरब्बिस समाई वल अर्द, अल्लाह कसम खा रहे हैं, सोचो मेरे भाइयों, पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु की जात कितनी अजीम है, मगर अपने बंदों को हक की तरफ लाने के लिए कसमें खाते हैं, कसमें खाते हैं। एक कौम में कोई मोहतरम शख्स हो, मुतदय्यिन आदमी हो, मोतमद शख्स हो, और वो कोई बात कहे और उसकी बात पर कोई कसम मांगे कि आप कसम खा करके कहिए तो कैसा नजर आएगा? इसकी बात पर एतिमाद नहीं, अल्लाह को कसम खाने की क्या जरूरत, लेकिन बंदों की खातिर कि शायद मेरी कसम के नतीजे में वो हक की तरफ आ जाए। तो कहते हैं कि जब मैंने पढ़ा फवरब समाई वल अर्द, आसमान और रब जमीन के रब की कसम, मरने के बाद की जिंदगी बरहक है जैसा कि ये बात कि तुम बोलते हो। तो कहते कि चीख मारी उस देहाती ने, और चीख मारने के बाद उसने कहा कि या सुबहान अल्लाह मनिल्लदी अगजबल जलील हत्ता हलफ, कौन है जिसने रब्बे जलील को गुस्सा दिलाया कि कसम खा करके कहनी बड़ी बात। और ये कहे अलम युसद्दिकुहु फी कौलिही हत्ता अलजौहु इलल यमीन, क्या अल्लाह के बंदों ने हक तआला शानहु की बात की बगैर कसम की तस्दीक नहीं की और अल्लाह को कसम खाने में मजबूर कर दिया? अल्लाह का नबी आता और उसकी बात सब मान लेते तो कसम खाने की जरूरत न पड़ती, लेकिन बात का इनकार किया अल्लाह की बात का और अल्लाह को कसम खाने पे मजबूर कर दिया। और उसने ये बात 3 मरतबा करी बहुत दर्द दिल से कि अलम युसद्दिकुहु फी कौली हत्ता अलजौहु इलल यमीन, और कहा कि वहीं उसका सांस जो है वह आखिरी सांस निकला और रूह परवाज कर गई और उसका इंतकाल हो गया। तो देखो ऐसे ऐसे लोगों को अल्लाह मारिफत अता फरमाते हैं जब वो रुजू इल्लाह करते हैं और अल्लाह के वादों पर यकीन करते हैं। एक बहुत बड़े ताबी गुजरे हैं, बहुत ज्यादा रोने धोने वाले, बहुत नेक आदमी, वो दिमश्क में रहते थे, अबू उस्मान अल हमदानी रहिमहुल्लाह ताला। उनके बारे में अल्लामा कुर्तुबी रहिमहुल्लाह ताला लिखा है कि उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि एक शख्स जो है उसे ऐसी जगह में भूख लगी कि जहां कोई भी खाने की चीज नहीं थी, तो उसने कहा कि अल्लाहुम्मा रिज़्क़कल्लज़ी वअदतनी फातिनी बिही, ए अल्लाह तूने जिस रोजी का मुझसे वादा किया है वो मुझे मेरे पास लेकर गया। तो वो अबू उस्मान अल हमदानी फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु ने कैसे रिज़्क़ का इंतजाम किया का बगैर खाए पेट भर गया और बगैर पिए प्यास बुझ गई, ये रिज़्क़ का इंतजाम किया अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु ने। तो अल्लाह ताला शानुहु ने अपने जिम्मे हमारी रोजी दे रखी है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, कोई जानदार नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे नहीं है। ये दाब्बतुन जो है ना हर जानदार के लिए, मगर आमतौर पर जब दाब्बतुन बोलते हैं तो उससे जानवर मुराद लिया जाता है रेंगने वाले जमीन पर। तो इस सिलसिले में एक दूसरा किस्सा भी है जो अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने नकल किया है कि अशअरीयीन हजरत अबू मूसा अल अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान के लोग जो यमन से इस्लाम कबूल करके हिजरत करके आ गए थे, तो अशअरीयीन में फाका आया, मदीना मुनव्वरा में रहते थे। तो उन्होंने एक शख्स को कहा कि तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करो कि फाका है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, अगर कोई ताउन की शक्ल हो सकती है। तो जिन साहिब को भेजा वो अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे थे कि जमीन पर रेंगने वाला कोई जानवर नहीं है, यानी दाबतुन का वो तर्जमा कर रहा हूं लुगवी एतबार से, कि जमीन पर रेंगने वाला कीड़े मकोड़े जो जमीन पर रेंगते हैं ऐसा कोई जानवर नहीं है, मगर यह कि अल्लाह के जिम्मे उसकी रोजी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू किए बगैर ही वो वापस लौट आया और उसने आकर के ये कहा कि अशअरीयीन इंसान है और मुसलमान है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाथ पे ईमान लाए हैं, ये मैं अपनी तस्दीक। उन्होंने कहा कि अशअरीयीन अल्लाह की नजर में जमीन पर रेंगने वाले जानवरों से कुछ हल्के फुल्के नहीं है। जब अल्लाह उनको रोजी देता है तो हमें अल्लाह क्यों नहीं रोजी देगा? तो इस सिलसिले में 2 बातें जहन में रखने की है। पहली बात ये कि हराम कमाई की तरफ हाथ नहीं बढ़ना चाहिए, हराम कमाई का 1 पैसा हमारे घर में नहीं आना चाहिए। इंसान तीन दिन तक भूखा रह सकता है, तीन दिन के बाद फिर भूखा नहीं रह सकता। तीन दिन तक हेल्थी इंसान होता है वो जिंदा, ये तीन दिन तक जिंदा रह सकता है भूख की हालत में भी, तीन दिन की बात नहीं, प्यास की हालत। हेल्थी आदमी प्यास और भूख की हालत में तीन दिन तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद उसके लिए हराम भी हलाल हो जाता है। तो हमें ऐसा जज्बा रखना चाहिए कि एक दिन खाना नहीं मिला, दो दिन खाना नहीं मिला, नहीं खाऊंगा, भूखे रहेंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे। हम लोग तो भूखे भी नहीं रहते, प्यासे भी नहीं रहते, नंगे भी नहीं रहते, घर पे छत भी होती है, मगर दुनिया की आसाइशों के लिए, दुनिया की नाजायज लज्जतों के लिए, बल्कि सिर्फ पैसे इकट्ठा करने के लिए हम हराम काम करते हैं और हराम तरीका इख्तियार करते हैं। तो हराम तरीका इख्तियार न किया जाए, नंबर एक। और नंबर दो, ऐसा काम न किया जाए कि जिस काम के नतीजे में अल्लाह के हुकूक पामल होते हो। ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें नमाजें नहीं मिल रही है, ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें जुमा नहीं पढ़ा जा रहा है, ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बीवी बच्चों के हुकूक अदा नहीं हो रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें धोखा देना पड़ता है। तो रोजी हलाल की आए हमारे घर में, और ऐसा कोई काम हम न करें जिसमें अल्लाह के कानून को तोड़ना पड़े। अल्लाह जल्ल जलालुहु आमना वालुहु इन बातों को हम सब के लिए नाफे बनाए। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء يا رب عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اصرف عنا هذا الوباء اللهم اصرف عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم إن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.